नारीवादी आंदोलन की यात्रा। भारतीय संदर्भ, स्त्रियों के प्रति भारतीय समाज का दृष्टिकोण शुरू से ही पितृसत्तात्मक एवं उत्पीड़नकारी रहा है। वैदिक युग में स्त्री को निसंदेह कुछ अधिकार दिए गए थे, लेकिन धीरे धीरे वह पितृसत्तात्मक समाज का उपनिवेश बना दी गई। यह अलग बात है कि अनेक वैदिक सूक्तों की सृजना स्त्रियों ने की है, लेकिन बाद में स्त्रियों और शूद्रों को वेद पाठ से वंचित कर दिया गया। पैराग्राफ चेंज। वेदों में यथास्थान पुत्री के लिए उपेक्षा का भाव दर्शाया गया है। इस बात की पुष्टि उर्वशी के कथन से भी होती है। इन्वर्टेड कॉमा में, पुरु रवो मां गृधा न वैस्त्राणी संख्यानी संति साला वृका नाम हृदयायन्ते सायण भाष्य यथा वत्सादीनाम विश्वास मापनानाम धातुकानी तद्वद। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका संदर्भ है ऋग्वेद 10-95-15। अर्थ है, स्त्रियों की मित्रता क्षणिक होती है, वे भेड़ियों के समान दिल वाली होती हैं। वे पहले तो पुरुषों को विश्वास में लेती हैं, फिर उसका वध कर देती हैं। पैराग्राफ चेंज। वैदिक युग के बाद स्मृतिकारों ने स्त्री से उसके बचे खुचे अधिकार भी छीन लिए और उसे आजीवन पुरुष का गुलाम बना दिया। मनु के अनुसार स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। उसे बचपन में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ मनुस्मृति 9-3। इन्वर्टेड कॉमा में, पिता रक्षति कौमारे कौमा भर्ता रक्षति यौवने। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि अपने पति और भगवान को मंद बुद्धि कहने वाली स्त्री गो हत्या का पाप करती है। पैराग्राफ चेंज। महाभारत में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी पुरुष की 100 जिह्वाएं हो, वह 100 वर्षों तक जिए तथा उसे स्त्रियों के दोष बखान करने के सिवा कोई दूसरा काम न हो तो भी वह उसके दोषों को बिना कहे मर जाएगा। संदर्भ ग्रंथ वही और इन्वर्टेड कॉमा में, यदि जिह्वा सहस्त्रम सयाजिवेच सर्दासतम अन्य कर्मा स्त्री दोषानुक्वा बजेत। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। पद्म पुराण के अनुसार स्त्रियां सती इसलिए होती हैं क्योंकि उन्हें गुप्त स्थान नहीं मिलता, याचक पुरुष नहीं मिलता। संदर्भ ग्रंथ है वही और इन्वर्टेड कॉमा में, स्थानम नास्ति स्थणम नास्ति न च प्रार्थयी तानरह तेन नारद नारीणाम सतित्व मुपजायत। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पैराग्राफ चेंज। उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि स्त्रियों को हमेशा ही पुरुष समाज ने न केवल कमतर बताकर लांछित किया है, बल्कि अपने इच्छा अनुसार उपयोग में लाता रहा है। अतः अगर पति के कहने पर वह दूसरे पुरुष के साथ यौनाचार भी करे तो वह धर्म के अनुकूल है। यह पृष्ठ संख्या 40 था, अब पृष्ठ संख्या 41। महाभारत का पांडु रुग्ण और नपुंसक था। वंश चलाने के लिए उसे पुत्र चाहिए था। जब उसकी पत्नियां व्यास के साथ नियोग करने से मना करती हैं, तो पांडु उसे समझाता है। इन्वर्टेड कॉमा में, पूर्व काल में स्त्रियां नग्न अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां जाने वाली और स्वतंत्र थी। वे कुंवारी रहते हुए ही अनेक पुरुषों के पास जाया करती थी। ऐसा करना अधर्म नहीं था, क्योंकि यही उस समय की परिपाटी थी। इसीलिए तुम भी वैसा ही करो, फिर भी तुम्हारा सतीत्व बचा रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ महाभारत 1-122। पैराग्राफ चेंज। स्त्रियों के प्रति हमारे धर्म ग्रंथों में किस तरह का पुरुषवादी नजरिया रहा है, यह हम युधिष्ठिर के कथन से जान चुके हैं कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन अग्नि लकड़ियों से कॉमा समुद्र नदियों से कॉमा यमराज मृत प्राणियों से और स्त्रियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती। नई घास चरने वाली गौओं की भांति स्त्रियां भी नित्य नए पुरुष को ग्रहण करती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ महाभारत 13-39-6। साथी 13-39-7। पैराग्राफ चेंज। भारतीय चिंतन परंपरा का दृष्टिकोण मूलतः पितृसत्तात्मक प्रतीत होता है। महाभारत हो या रामायण, उसके सारे पात्र मूलतः पितृसत्तात्मक मूल्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। पैराग्राफ चेंज। वाल्मीकि के राम तो सीता को कुत्तों के जूठे घी की तरह त्याज्य बताता है। संदर्भ ग्रंथ वाल्मीकि रामायण 3-257-13। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम का पुरुष चरित्र। पैराग्राफ चेंज। तुलसीदास इसी परंपरा में दो कदम आगे बढ़कर कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पैराग्राफ चेंज। कबीर जैसे युगचेता विद्रोही संत भी स्त्रियों को माया महाठगनी के रूप में देखते हैं। उनके जैसा सामाजिक चेतना से संपृक्त संत भी यही कहता है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जे नित नारी संग। पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार भारतीय वांग्मय में स्त्री को अगर पुरुष अनुगामिनी व पूज्य माना गया है तो उसका स्वाभाविक मानवीय रूप ही गायब कर दिया गया है, या फिर उसे पाप का द्वार महाठगनी ताड़ना की अधिकारी कहकर इतना हेय बना दिया गया है कि समाज में वे सिर्फ पुरुषों की गुलाम बनकर रहने की अभिशप्त हो गई। पैराग्राफ चेंज। 19वीं सदी के पुनर्जागरण एवं अंग्रेजी शिक्षा नीति के प्रसार के फलस्वरूप परिस्थितियां कुछ बदली। स्त्री शिक्षा पर जोर दिया गया। राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज एवं दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से स्त्रियों की सामाजिक दशा में सुधार के अनेक कार्य किए। समाज में जागरूकता पैदा कर सती प्रथा जैसे कलंकित रिवाज को समाप्त करने की कोशिश की। विधवा विवाह पर जोर दिया, परंतु समाज में स्त्री विरोधी ताकतें इस कदर अपनी जड़ जमाई हुई थी कि इन छिटपुट प्रयासों से स्त्रियों के उत्पीड़न में कमी नहीं आई। पृष्ठ संख्या 42। लेकिन शिक्षा की नई रोशनी के प्रसार से स्त्रियों में भी पुरुषवादी समाज से प्रश्न पूछने की हिम्मत आई। स्त्रियों ने समाज परिवार और देश में अपनी स्थिति को लेकर सिर्फ आत्ममंथन ही नहीं किया, बल्कि समाज के नियम निर्माताओं से जमकर जवाब तलब भी किए। पैराग्राफ चेंज। इस संदर्भ में सीमंतिनी उपदेश की अज्ञात लेखिका और मराठी भाषी ताराबाई शिंदे की पुस्तक को क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। ताराबाई शिंदे की पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ताराबाई एक प्रभावशाली मराठा परिवार से थी। उनके पिता का संबंध ज्योतिबा फूले के ब्राह्मण विरोधी आंदोलन से था। इस पुस्तक में अतीत में ब्राह्मणों द्वारा गढ़े गए स्त्री संबंधी मिथकों को सिरे से खारिज किया गया है और स्त्री मुक्ति प्रश्नों पर गंभीरता से विचार किया गया है। पैराग्राफ चेंज। स्वदेशी आंदोलन के दौरान आम मध्य वर्ग में भी एक नई मुक्ति चेतना जगी थी। चौथे दशक में स्त्रियों के नेतृत्व में स्त्री अधिकार आंदोलन कतिपय सामाजिक सुधार आंदोलनों के रूप में और विभिन्न स्त्री कल्याणकारी संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से सक्रिय हो गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व पंडिता रमाबाई राणाडे, आनंदीबाई जोशी, फ्रनना सरोजनी, एनी जगन्नाथन और रुकमाबाई कर रही थी। पैराग्राफ चेंज। 20वीं शताब्दी के पहले दशक में स्त्री मुक्ति आंदोलन की दशा में एक रचनात्मक और संवेगपूर्ण पहल नेहरू परिवार की चार महिलाओं रामेश्वरी नेहरू, उमा नेहरू, कमला नेहरू और रूप कुमारी नेहरू ने की। 1909 ईस्वी में रामेश्वरी ने प्रयाग महिला समिति का गठन किया और अपने संपादन में स्त्री दर्पण नामक एक गंभीर पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया। स्त्रियों की सामाजिक जागृति और आंदोलन के क्षेत्र में जो दूसरी परिघटना इस शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में सामने आई वह थी महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित स्त्री मुक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा और राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों की व्यापक भागीदारी के रूप में सामने आने वाला गांधी का व्यवहारिक स्त्री मुक्ति सिद्धांत। पैराग्राफ चेंज। 19वीं सदी के समाज सुधारकों के विपरीत अभिजन समाज के दायरे से बाहर आकर उन्होंने पहली बार आधुनिक भारतीय नारी को चूल्हे चौकट की अलंघ्य सीमा रेखा से बाहर राष्ट्रीय व सामाजिक घटना प्रवाह के बीच लाकर सामाजिक वैयक्तिक अस्मिता का बोध कराया। संदर्भ ग्रंथ है कात्यायनी, दुर्ग द्वार पर दस्तक, परिकल्पना प्रकाशन, लखनऊ 1998, पृष्ठ संख्या 123। पैराग्राफ चेंज। इस तरह पर्दा प्रथा, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्रियों के राजनीतिक अधिकार जैसे मुद्दे को बहस का रूप देकर स्त्री चेतना की लहर चलाई गई। पैराग्राफ चेंज। दूसरे और तीसरे दशक में हिंदी भाषी क्षेत्र में नारी जागरण का जो उभार दिखाई पड़ा उसमें कई धाराएं सक्रिय थीं, जिन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पृष्ठ संख्या 43। एक ओर आर्य समाज का सामाजिक आंदोलन था तो दूसरी ओर गांधी के राजनीतिक आंदोलन एवं विचारों से प्रभावित सुधारवादी धाराएं थी। पैराग्राफ चेंज। आजादी के आंदोलन के दौरान पढ़ी लिखी स्त्रियों का एक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ। शिक्षा के आलोक में वह पुरुष के साथ हर क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाने लगी। इस समय संगठित रूप से कोई आंदोलन तो नहीं हुए, लेकिन छिटपुट रूप से अनेक मुद्दों पर स्त्रियों ने अपनी आवाज उठाई। संदर्भ ग्रंथ अनामिका, पुस्तक स्त्रीत्व का मानचित्र, सारांश प्रकाशन, पृष्ठ 106। पैराग्राफ चेंज। आजादी के बाद 1972 में गुजरात में पहले पहल स्त्री ट्रेड आंदोलन का गठन हुआ। 1974 में हैदराबाद में पहला सचेतन महिला संगठन POW ब्रैकेट में प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन इन ब्रैकेट बंद अस्तित्व में आया। पैराग्राफ चेंज। पत्नी प्रताड़ना के मुद्दे पर गठित माओवादी स्त्रियों की सभा फ्रेडरिक एंगल्स और इजैक बेबेल के स्त्री संबंधी विश्लेषणों से प्रभावित होकर काम कर रही थी। पैराग्राफ चेंज। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 80-90 का दशक महत्वपूर्ण रहा है। इस बीच सामाजिक राजनीतिक एवं साहित्यिक हलकों में भी स्त्री आंदोलन तेज हुआ। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां अपने अधिकारों के प्रति न केवल सजग हुई बल्कि पितृसत्ता के प्रतिवाद में अपनी आवाज भी बुलंद करने। पैराग्राफ चेंज। दिल्ली में महिला दक्षता समिति, स्त्री संघर्ष और महिला रक्षा समिति जैसे अनेक स्त्रीवादी संगठन अस्तित्व में आए। बलात्कार, दहेज प्रथा आदि के विरोध में इन संगठनों ने मोर्चा संभाला और सामाजिक धरातल से लेकर कानूनी स्तर तक संघर्ष की शुरुआत हुई। पैराग्राफ चेंज। आठवें दशक तक आते आते नारी संगठनों की गतिविधियां बहुआयामी होती गईं। स्त्री विमर्शवादी साहित्य अपने उत्कर्ष पर आने लगा। नारी आंदोलन के कारण झुग्गी झोपड़ियों तक में नारी शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण, कार्य प्रशिक्षण तथा महिला लघु उद्योगों के विकास की लहर तेजी से फैलती चली गई और नारी श्रमिक संघ आदि का गठन होने लगा। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 107। पैराग्राफ चेंज। विद्यालयों में फेमिनिस्ट स्टडीज का नाम का अंतर विद्याशास्त्रीय अध्ययन का एक अलग संकाय ही बन गया। महाविद्यालयों में भी यूजीसी संपोषित सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट ब्रैकेट में C.W.D. ब्रैकेट क्लोज खुल गए। पैराग्राफ चेंज। इसी समय ब्रैकेट में 1986 में हंस का पुनर्प्रकाशन राजेंद्र यादव के संपादन में शुरू हुआ। हंस ने स्त्री विमर्श को साहित्य के केंद्र में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्त्री विमर्श में हंस की भूमिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण कवि व आलोचक अशोक वाजपेयी की टिप्पणी है, हंस ने अपने को नीरे साहित्यिक मुद्दे तक सीमित नहीं रखा और अनेक सामाजिक विषयों को भी अपनी परिधि में समेटा है। यह दलित चेतना, स्त्री विमर्श आदि अगर आज हमारे समय की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों के रूप में व्यापक रूप से मान्यता पा सके हैं तो इसका कुछ श्रेय हंस पृष्ठ संख्या 44 को अवश्य जाता है। पैराग्राफ चेंज। हंस के इस हस्तक्षेप से आधुनिक दृष्टि से संपृक्त महिला रचनाकारों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ है जिसने पितृसत्ता के हरेक पहलू का मूल्यांकन कर उसे ध्वस्त करने की कोशिश की। पत्रिका के स्त्री विमर्श पर आधारित 3 विशेषांकों के प्रकाशन ने हिंदी साहित्य के केंद्र में न केवल इस मुद्दे को स्थापित किया बल्कि इसे आगे भी बढ़ाया। हंस के साथ साथ अन्य पत्रिकाओं ने भी इन मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। पैराग्राफ चेंज। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में स्त्री विमर्श पर आधारित अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें भी प्रकाशित हुईं, जिससे सही मायने में एक सार्थक विमर्श की शुरुआत हुई। पैराग्राफ चेंज। स्त्री जीवन की त्रासदी और सामाजिक विडंबनाओं पर केंद्रित कई उपन्यास, कथा संग्रह, कविता संग्रह, वैचारिक निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए, जिसने हिंदी भाषी पाठकों के बीच स्त्री विमर्श की आधार भूमि तैयार की। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान समय में स्त्री विमर्श के क्षेत्र में लेखन करने वाली कई प्रतिभाएं प्रतिबद्धता के साथ जुटी हैं, जो अपने अनुभव और ज्ञान के द्वारा स्त्री विमर्श को आगे बढ़ा रही हैं। पहले की तरह वह अपनी बात कहने में सकुचाती नहीं है बल्कि आत्मविश्वास के साथ दृढ़ता पूर्वक अपनी अपेक्षाओं और अधिकारों की बात रखती हैं। पैराग्राफ चेंज। वर्तमान नारीवादी लेखिका अपने चिंतन के केंद्र में सौंदर्य को परंपरागत प्रतिमानों से मुक्त करवाना चाहती हैं, क्योंकि देश की अधिकांश महिलाएं काम की तलाश में भटक रही हैं। स्व अस्तित्व और उन्मुखता जैसी समस्याओं से इनका संबंध नहीं है। संदर्भ ग्रंथ मृणाल पांडे, पुस्तक परिधि पर स्त्री, राधा कृष्ण प्रकाशन 1996। विस्तृत विवरण के लिए दृष्टव्य। पैराग्राफ चेंज। स्त्रियों में आई नई चेतना का ही परिणाम है कि भारत सरकार ने वर्ष 2001 को स्त्री सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया है और स्त्रियों का जीवन स्तर सामाजिक स्तर उठाने की कई घोषणाएं की और स्त्रियों का जीवन स्तर सामाजिक स्तर उठाने की घोषणाएं की। संसद में स्त्रियों के लिए सीटों के आरक्षण की बातें भी जोर शोर से उठ रही हैं। पंचायत स्तर पर भारी संख्या में अनपढ़ महिलाएं सरपंच का चुना जाना स्त्री चेतना का ही परिणाम है। क्षमा शर्मा समकालीन स्त्री विमर्श की उपलब्धियों का विश्लेषण करते हुए लिखती हैं, इन्वर्टेड कॉमा पेन, स्त्रीवादी विचार ने और जो किया सो किया, कॉमा, पूज्य होने के विचार की धज्जियां उड़ा दी, पूर्ण विराम। पहली बार स्त्री को पता चला कि देवी होने के जिस अभिमान से वह मरी जा रही थी वह दरअसल उस मगनता का आख्यान नहीं, कॉमा, मर्दों द्वारा सदियों से बनाया गया ऐसा विचार भर था जिसने कभी पूज कर तो कभी पीट कर अपनी सत्ता कायम कर रखी थी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ क्षमा शर्मा किताब है स्त्री का समय, प्रकाशन मेधा बुक्स, दिल्ली 2001, पृष्ठ संख्या 18। मृदुला गर्ग साहित्यहास में स्त्री की स्थिति और अस्मिता का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हुए नारीवाद की नई परिभाषा के तहत उसे देशी नारीवाद की संज्ञा देती हैं। संदर्भ ग्रंथ अर्चना वर्मा वागर्थ सितंबर स्त्री विमर्श से संबंधित आलेख, पृष्ठ संख्या 101, पैराग्राफ चेंज। वर्तमान भारतीय नारीवाद आंदोलन संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, पृष्ठ संख्या 45। आज भी स्त्रियों के प्रति उत्पीड़न एवं रूढ़ियों का अंत नहीं हुआ है और एक अकेली स्त्री के लिए समाज में अस्तित्व का सवाल सामाजिक मान्यताओं की बेड़ियों में उलझा हुआ है। मंजिल तक पहुंचने में उसे अभी अनेक संकटों से रूबरू होना है। इस संदर्भ में अर्चना वर्मा अपने एक लेख में कहती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, भारत का नारीवाद आंदोलन सभी दलित मानसिकता के पहले ही दौर में है। पिछली और अगली सदी के संधि प्रदेश पर स्त्री अपने हाथ में सशक्तिकरण का प्रावधान लिए खड़ी है, लेकिन अत्याचारी का प्रतिरूप यानी दोयम दर्जे का पुरुष बन जाने की संभाव्य नियति से गुजर रही है। सशक्तिकरण का पहला बिंदु है अपने फैसले खुद करने का अधिकार, यानी एक ओर अपनी छवि को और दूसरी ओर अपने कर्म को स्वयं निर्धारित करने का अधिकार। यह किसी के दे देने से मिलने वाला अधिकार नहीं है, इसे खुद बढ़कर लेना होता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ सुधीश पचौरी पुस्तक उत्तर आधुनिक साहित्यिक विमर्श, पृष्ठ संख्या 36, पैराग्राफ चेंज। भारत में स्त्री विमर्श की दशा और दिशा को देखकर लगता है कि निकट भविष्य में कुछ टूटेगा और स्त्री विमर्श की नई जमीन पर बहुत कुछ नया रचा जाएगा। इस संदर्भ में सुधीश पचौरी की टिप्पणी है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, साहित्य में एक बड़ा समर स्त्री केंद्र से उठना है, कॉमा, रस सिद्धांत का उलटना है, कॉमा, नायिका भेद से टूटना है, कॉमा, वृत्तांत टूटने हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ अनामिका पुस्तक स्त्रीत्व का मानचित्र, प्रकाशन सारांश प्रकाशन, सन 1999, पृष्ठ 18, पैराग्राफ चेंज। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि स्त्री को अभी कई मोर्चों पर एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी, अपने घर में, समाज में और साहित्य में भी। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र एक तरफा है, इस सौंदर्य शास्त्र से पितृ सत्तात्मक मानसिकता को हटाकर संतुलित करना होगा। मर्दवादी सौंदर्य शास्त्र को स्त्री ही पलट सकती है और आधी दुनिया के यथार्थ को सामने ला सकती है। यह स्त्रियों को ही सोचना है कि कौन सा काम उसके पक्ष में जा रहा है और कौन सा विरोध में। अब पाश्चात्य संदर्भ, नए पेरिस से पश्चिम में स्त्री विमर्श आज सुव्यवस्थित रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन यह अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे स्त्रीवादी आंदोलन का एक लंबा और संघर्षपूर्ण इतिहास है। पैराग्राफ चिन्ह, शुरुआत में पाश्चात्य दार्शनिकों का दृष्टिकोण स्त्रियों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित दिखाई पड़ता है। उनके अनुसार दार्शनिक विमर्श और बौद्धिक चिंतन से गुलामों और वहशियों की तरह स्त्रियों को भी दूर रखना चाहिए। इस संदर्भ में सुकरात की टिप्पणी है, पैराग्राफ इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सच्चे दार्शनिक को तो मृत्यु से डर नहीं लगता और स्त्रियां मृत्यु का नाम सुनते ही रोने कलपने लगती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ अनामिका, पुस्तक स्त्रीत्व का मानचित्र, प्रकाशन सारांश, सन 1999, पृष्ठ 18। पैराग्राफ चेंज, प्लेटो बुद्धिजीवियों को स्त्री से दूर रहने की सलाह देता है क्योंकि गुलाम और स्त्री सिर्फ शासन करने के लिए नहीं है। प्लेटो का कहना है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्त्री की काया के साथ तो कोई स्त्री दार्शनिक गंभीर कार्यों में शिरकत करने के योग्य नहीं समझी, पृष्ठ संख्या 46, जा सकती, कॉमा, पर इसकी उम्मीद जरूर है कि मृत्यु के बाद कायांतरण हो, कॉमा, वह पुरुष का चोला पहने और तब संभाले राजकाज। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 22-23। प्लेटो का मानना है कि जो पुरुष ढंग से अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, उन्हें अगले जन्म में दंड स्वरूप स्त्री का शरीर मिलता है। पैराग्राफ चेंज, उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्राचीन पश्चिमी दर्शन में स्त्रियों को स्वभावगत कमजोर बताकर उसे गुलामों की श्रेणी में रखा गया। पैराग्राफ चेंज, अरस्तु स्त्रियों की अच्छाई का मानदंड उनकी नमनीयता, आज्ञाकारिता, सहिष्णुता और सेवा भावना को मानता है। वहीं कांट का मानना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पुरुष कहीं भी कुछ सीखने और पढ़ने के लिए सार्वजनिक स्थानों का असीमित इस्तेमाल स्वतंत्रता पूर्वक करता है। अपनी इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल चाहे वह कुछ सीखने के लिए करे या बोलने के लिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 24। पैराग्राफ चिन्ह, मार्क्सवाद के अस्तित्व में आने के बाद स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा, किंतु मार्क्स ने भी स्त्रियों को शोषित वर्ग प्रतिनिधि के रूप में देखा, सिर्फ एक औरत के रूप में नहीं। लेकिन एंगल्स ने संपत्ति की अवधारणा के विकास के संदर्भ में स्त्रियों की सर्वहारा स्थिति और पुरुष बुर्जुआजी को स्पष्टतः रेखांकित किया। एंगल्स का कथन है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, व्यक्तिक संपत्ति की अवधारणा के विकास का सीधा संबंध संपत्ति के उचित उत्तराधिकारी यानी अपनी संतान के संधान से था, और संतान अपनी हो, इसकी गारंटी तभी हो सकती थी जब स्तनधारिणी गिरफ्त में रहे यानी उसकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या, सॉरी, संदर्भ ग्रंथ है कात्यायनी, पुस्तक दुर्ग द्वार पर दस्तक, पृष्ठ संख्या 90। पैराग्राफ चेंज, 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच के समय में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के प्रतिरोध की चेतना जागृत होती प्रतीत होती है। इस संदर्भ में कात्यायनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, सामंतवाद के युग तक स्त्रियों को संपत्ति के अधिकार सहित कोई भी सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था और उनकी इस सामाजिक पारिवारिक मातहती की स्थिति को धर्म कानून और सामाजिक विधानों की स्वीकृति प्राप्त थी। सामंतवाद के गर्भ में जब पूंजीवाद का भ्रूण विकसित हो रहा था उसी समय से सामाजिक उत्पादन में स्त्रियों की भागीदारी शुरू होकर बढ़ती चली गई। यही वह भौतिक आधार था जिसने पहली बार स्त्रियों के भीतर सामाजिक अधिकारों की चेतना को जन्म दिया। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 93। पैराग्राफ चेंज। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राष्ट्रीय असेंबली में ओलंपिक द गाउजेस द्वारा 1797 में स्त्रियों और स्त्री नागरिकों के अधिकारों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, लेकिन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक स्त्री को वस्तु के रूप में ही देखा गया और तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा ऐसे तर्कों का प्रचार प्रसार किया जाता रहा कि स्त्रियों को चर्च, रसोई और बच्चों तक ही सीमित रहना है। इस तथ्य की पुष्टि फ्रांसीसी दार्शनिक ओमुस्त कोंट की निम्नांकित टिप्पणी से होती है, पृष्ठ संख्या 47, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। नारी समुदाय की असमानतापूर्ण सामाजिक स्थिति का मूल कारण नारी शरीर की प्राकृतिक दुर्बलता में निहित है। स्त्रियां स्वाभाविक एवं प्राकृतिक तौर पर पारिवारिक जिम्मेदारियों, प्रजनन, शिशु पालन आदि के लिए ही बनी होती हैं और वे कभी भी सामाजिक तौर पर पुरुषों के समकक्ष नहीं हो सकती। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 94। पैराग्राफ चेंज। ऐसी विचारधाराओं के पल्लवित होने के बावजूद नारी आंदोलन और विमर्श की धारा सूखी नहीं। कात्यायनी इसे स्पष्ट रेखांकित करते हुए कहती हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, 19वीं सदी के चौथे पांचवें दशक में फ्रांस में बड़े पैमाने पर ऐसा क्रांतिकारी यथार्थवादी साहित्य उत्पादित हुआ जिसमें स्त्रियों की पारिवारिक गुलामी और सामाजिक असमानता की आलोचना की गई। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 95। पैराग्राफ चेंज। 1869 में जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक द सबसेक्शन ऑफ विमेन प्रकाशित हुआ जो पितृसत्ता द्वारा गढ़े गए मिथक, पारंपरिक दर्शन और मनोविज्ञान को चुनौती देती हुई प्रतीत होती है और लैंगिक भेदभाव, सामाजिक असमानता और राजनीतिक षड्यंत्र का पर्दाफाश करती है। जॉन स्टुअर्ट मिल की बातों से हम अवगत हैं। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। यह कहने से भी कुछ साबित नहीं होता कि दोनों लिंगों के स्वभाव के अनुसार ही उनके वर्तमान कार्य और स्थितियां बटी हुई हैं और यही उनके लिए श्रेष्ठ है। आम समझ और मानव मस्तिष्क की बनावट के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कोई भी दोनों लिंगों के स्वभाव को न जान सकता है जब तक कि उन्हें अलग अलग स्थितियों में रखकर देख न लिया जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ जॉन स्टुअर्ट मिल, पुस्तक स्त्री और पराधीनता, प्रकाशन संवाद, मेरठ 2002, पृष्ठ संख्या 31। पैराग्राफ चेंज। जॉन स्टुअर्ट मिल स्त्री पीड़ा की सही समझ के लिए स्त्रियों की स्व अभिव्यक्ति की वकालत करते हुए कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, जब तक खुद स्त्री अपनी व्यथा न सुना दे तब तक हम स्त्रियों के बारे में सही समझ विकसित नहीं कर सकते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ वही, पृष्ठ संख्या 35। पैराग्राफ चेंज। इसके अलावा सिमोन द बोवार कॉमा किट मिलेट कॉमा बैटी फ्रिडन कॉमा इरी गैरो कॉमा दरीदा कॉमा लाका आदि ने स्त्री की समस्याओं को अपने अपने ढंग से उठाकर एक नई बहस की शुरुआत की, जिसके कारण पितृसत्तात्मक मूल्यों एवं दोहरे नैतिक मानदंडों को पहचानने की एक नई दृष्टि विकसित हुई। पैराग्राफ चेंज। आधुनिक नारीवाद के विकास का पहला मील का पत्थर 1946 ईस्वी में प्रकाशित सिमोन द बोवार की पुस्तक द सेकंड सेक्स को माना जाता है। पैराग्राफ चेंज। सिमोन ने पितृसत्तात्मक समाज का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर स्त्री विमर्श को तेज गति प्रदान की। इस पुस्तक में उन्होंने स्थापना दी कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बना दी जाती है। उसने स्त्री उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए स्त्री मुक्ति की बात को प्रखरता से प्रस्तुत किया और स्त्री मुक्ति में ही पुरुषों की मुक्ति को भी देखा। इस संदर्भ में सिमोन का कहना है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्त्री स्वाधीनता का अर्थ हुआ कि स्त्री पुरुष से जिस पारंपरिक संबंध को निभा रही है उससे मुक्त हो। हम स्त्री पुरुष के बीच घटने वाले संबंध को, पृष्ठ संख्या 48, नहीं नकार रहे। उसका अपना स्वतंत्र स्त्रीत्व होगा और पुरुष की होकर भी वह जिए ही। दोनों अपनी स्वायत्तता में दूसरे का आनंद रूप भी देखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता, पृष्ठ संख्या 346। पैराग्राफ चेंज। स्त्री विमर्श की गति को आगे बढ़ाने वाली दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक बैटी फ्रिडन की द फेमिनिन मिस्टिक सन 1963 में प्रकाशित हुई, जिसमें इन्वर्टेड कॉमा ओपन, स्त्रियों की घरेलू दासता और पुरुष स्वामित्व को स्वीकार करने, उनके दिमाग की कंडीशनिंग की प्रक्रिया की उग्र लेकिन एकांगी एवं अनैतिहासिक आलोचना की गई। संदर्भ ग्रंथ कात्यायनी, पुस्तक पूर्वोद्धृत, पृष्ठ संख्या 113। पैराग्राफ चेंज। स्त्री विमर्श की गति को मार्क्सवादी नारीवादियों ने भी दिशा प्रदान की। प्रभा खेतान ने हंस के विशेषांक, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य में प्रकाशित अपने एक लेख में इसका जिक्र करते हुए लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, अमेरिका में केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स और सुलामित फायरस्टोन की डायलेक्टिक ऑफ सेक्स सन 1970 में प्रकाशित हुई। इन नारीवादियों पर मार्क्सवाद का प्रभाव था। इसी समय जूलियट मिशेल की मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित पुस्तक वुमेन स्टेट प्रकाशित हुई। इनका कहना था कि स्त्री मुक्ति संबंधी सारे सिद्धांतों का स्रोत स्त्री का निजी जीवन है। इनका प्रमुख नारा था, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। इन विचारकों ने स्त्री को अपनी खामोशी तोड़ने को कहा तथा सामाजिक मंचों पर दलन पर विचार विमर्श के लिए निमंत्रित किया। पैराग्राफ चेंज। सन 1970 में ही द फीमेल यूनक ब्रैकेट में हिंदी में विरोधी स्त्री के नाम से अनुदित प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के माध्यम से जर्मेन ग्रियर ने स्त्री की देह आत्मा प्रेम और घृणा के प्रति पारंपरिक रूढ़िवादी मानसिकता की धज्जियां उड़ाई और क्रांति का जयघोष किया। इस पुस्तक के बारे में अनामिका का कथन है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन जर्मेन ग्रियर समृद्ध पश्चिम की उन गिनी चुनी स्त्रीवादियों में एक है जिन्हें तीसरी दुनिया की स्त्रियों की चिंता है। वे जानती हैं कि पश्चिम के पोस्ट पोस्ट फेमिनिज्म के इस दौर में भी कुछ समस्याएं पूर्व और पश्चिम की स्थितियों की साझा समस्याएं हैं और जो कुछ ऐसी हैं जो वैश्वीकरण के इस निकट समय में विकासशील देश की स्त्रियों का जीवन विशेष रूप से दुभर किए हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ समयांतर दिसंबर 2001 पृष्ठ संख्या 31 पैराग्राफ चेंज। इस पुस्तक के बारे में जर्मेन ग्रियर की टिप्पणी है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह पुस्तक नारीवाद की दूसरी लहर का हिस्सा है। उन पुरानी स्त्री मताधिकार की संघर्षकर्ताओं ने जिन्होंने कैद काटी और धीरे धीरे उन व्यवसायों में जिन्हें अपनाने से उन्होंने इनकार किया, उन संसदीय स्वतंत्रताओं में जिन्हें इस्तेमाल करने से इनकार किया, उन शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्हें उन्होंने विवाह होने के इंतजार का समय काटने और डिग्रियां लेने की दुकानों के रूप में उपयोग किया, स्त्रियों के प्रवेश को देखने को जिंदा रही, अपनी भावना को एक नई और जीवंत भूमिका वाली युवा स्त्री में पुनर्जीवित होते देखा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ जर्मेन ग्रियर पुस्तक विद्रोही स्त्री पृष्ठ संख्या 13 पैराग्राफ चेंज। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के माध्यम से कैट मिलेट ने इस बात को सामने लाया, पृष्ठ संख्या 49, कि किस प्रकार पितृसत्ता ने अपने लिंग प्रभुत्व द्वारा साहित्य संस्कृति और कला चिंतन तथा जीवन में लिंग भेद को बढ़ाया। इस पुस्तक की उपलब्धि के विषय में एक नारीवादी युवा आलोचक की टिप्पणी है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, केट मिलेट की सर्वोपरि उपलब्धि यह है कि उन्होंने पहली बार बोवार से प्रेरणा मार्गदर्शन लेकर नारीवादी चिंतन को सिद्धांतबद्ध और शास्त्रबद्ध किया। नारीवादी काव्य शास्त्र को एक अनुशासन के रूप में विकसित किया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ राकेश कुमार पुस्तक नारीवादी विमर्श पृष्ठ संख्या 134 पैराग्राफ चेंज। केट मिलेट ने सेक्सुअल पॉलिटिक्स के बहाने लिंग राजनीति द्वारा पाठ की एक नई व्याख्या प्रस्तुत की। मिलेट ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी रचना में वर्णित स्त्री पुरुष संबंध एक विशेष प्रकार की लिंग राजनीति से प्रेरित और परिचालित होते हैं। कोई भी रचना इस लिंग राजनीति से नहीं बच पाती, यहाँ तक कि उसमें वर्णित स्त्री पुरुष संबंध को अभिव्यक्त करने वाली सौंदर्यात्मक पद्धति की मानसिकता भी लिंग राजनीति से जुड़ी हुई होती है। पैराग्राफ चेंज। 1973 में सीला रॉबथम की हिडन फ्रॉम हिस्ट्री और एलेन सोवल्टा की अ लिटरेचर देयर ऑन प्रकाशित हुई, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, एलेन सोवल्टा के अनुसार स्त्री दलन का मुख्य कारण निजी संपत्ति की अवधारणा है। यह अवधारणा एक ऐसी व्यवस्था का जनक है जो सिर्फ कुछ व्यक्तियों के हाथ में संपत्ति और सत्ता दोनों दे देती है। अतः स्त्री दलन का कारण पितृसत्ता नहीं पूंजीवाद है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ प्रभा खेतान पुस्तक पूर्वोद्धृत पृष्ठ संख्या 80 पैराग्राफ चेंज। इस तरह सीला रॉबथम, डोना हार्वे, जूलियट मिसल जैसी मार्क्सवादी विदुषियों ने मार्क्सवाद की पुनर्व्याख्या करने की कोशिश की, जिसका परिणाम यह हुआ कि स्त्री मुक्ति आंदोलन वर्ग संघर्ष से हटकर दो धाराओं में बट गया। पहली धारा की विदुषी जहां मार्क्सवादी अवधारणात्मक संरचना के भीतर ही स्त्री मुक्ति की अवधारणा का विश्लेषण करती थी, वहीं दूसरी धारा की स्त्रियां सर्वहारा से हटकर विश्व मंच पर अपनी बात रखना चाहती थी। पैराग्राफ चेंज। 1970 से सन 1980 तक अधिकतर नारीवादी सिद्धांतों की प्रमुख समस्या थी कि स्त्री को अधीनता से मुक्ति मिले, और इसके लिए बहुतेरी नारीवादियों ने मार्क्स को एक मसीहा के रूप में पाया। 80 के दशक के बाद बहुतेरी नारीवादियों ने गृहस्थी और श्रम के बाजार के भौतिक विश्लेषण के बदले भाषा की संरचना, प्रतिनिधित्व का अधिकार एवं समस्या तथा सत्ता के विमर्श पर प्रश्न उठाए तथा वैश्विक स्तर पर सामाजिक संरचना, पितृसत्ता और पूंजीवाद के विश्लेषण के बदले विभिन्न संस्कृतियों के विमर्श, विचारधारा और मनोविश्लेषण को प्रस्तुत किया। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ 40। पैराग्राफ चेंज। 90 के दशक में आकर उत्तर आधुनिकतावाद का प्रभाव स्त्री विमर्श पर भी पड़ा। इन सिद्धांतकर्ताओं में वुड लेक्सी ब्रैकेट में 1988 आदि मशहूर हुई। गायत्री स्पीक बॉक के मतानुसार इस उत्तर औपनिवेशिक दुनिया में स्त्रीकरण से उत्पन्न जटिल समस्याओं का सामना केवल उत्तर आधुनिक तरीके से ही किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। उत्तर संरचनावाद पृष्ठ संख्या 50 का मानना था कि अर्थ भाषा में अनुस्यूत नहीं होता, वह उसकी सतह पर तैरता, खेलता, नृत्य करता है। इसीलिए भी लेखक और पाठक के बीच की नाल ब्रैकेट में नाभिकीय बंधन पूरी तरह कटी नजर आती है। लेखकीय मनसा अनुसूचकों के घाल मेल में घुल सी जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि जो वह कहना चाहता है उससे उल्टी बातें सामने आ जाती हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ स्त्रीत्व का मानचित्र पृष्ठ संख्या 80। पैराग्राफ चेंज। लेकिन सिल्विया वॉलवाई ब्रैकेट में 1992 ने उत्तर आधुनिकतावादियों को सबसे बड़ी चुनौती दी। इस बारे में प्रभा खेतान कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, संस्कृति की भिन्नता को स्वीकारते हुए भी सिल्विया का तर्क है कि हम यो स्त्री को जाति और वर्ग में नहीं तोड़ सकते, और न ही उसे उसकी स्थानीयता में कैद कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ प्रभा खेतान पुस्तक पूर्वोद्धृत पृष्ठ 41। पैराग्राफ चेंज। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्त्री विमर्श की एक ऐतिहासिक परंपरा पश्चिम में रही है, जिसके कारण अब वहां पुरुष वर्चस्व नहीं के बराबर है। वहां की स्त्री अब अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रही है। सामाजिक समानता की लड़ाई के साथ उपभोक्ता संस्कृति के खिलाफ जनमानस तैयार करने में जुटी है। समाप्त।